ओम शांति। मीठी बाणी बोल रहे मनवा। हाँ जी, आज बाबा ने हम सबको मुरली में भी यही कहा ना कि ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जो किसी को पत्थर लगे, जख्मी कर दें। आज बाबा ने हमारी तकदीर के बारे में बताया। तकदीर हमारी कैसे बिगड़ी है? पतित बनने से तकदीर बिगड़ी है, इसलिए तुम्हें अब बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। तो हमारी जो तकदीर बिगड़ी है, बाबा ने हम सबको उन सब बातों से अवगत कराया, जानकारी दी, जिसके कारण आत्मा पर काली, आत्मा काली हो गई थी, क्रूप हो गई थी। आज की मुरली में था ना, ब्लैकआउट हो गई थी, आत्मा तमो प्रधान बन गई थी, जो सतो प्रधान थी, एकदम गोरी थी, सुंदर थी। तो बाबा आज हम सबकी तकदीर बनाने के लिए हम सबको शिक्षा दी बाबा ने। आज केवल सारे कल्प में ये एक छोटा सा संगम युग है जिसमें हम सारे कल्प की तकदीर बनाते हैं, ना केवल 21 जन्मों की बल्कि 84 पूरे कल्प की तकदीर अभी ही बन रही है। जो बीज हम बोएंगे अभी और उस बीज का जिस तरीके से पालन पोषण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, साफ संभाल करेंगे, समय समय पर उसको जो चीजें चाहिए होती हैं उसको देंगे, उसी अनुसार उसका फल मिलता है। तो संगम एक बहुत छोटा सा समय है। इस समय को बाबा कहते कभी बर्बाद नहीं करना। एक सेकंड भी बहुत कीमती है, एक एक सेकंड बहुत अनमोल है। एक स्लोगन था ना, जो बच्चे समय को अमूल्य समझकर चलते हैं वो कभी समय पर धोखा नहीं खाते। 8-10 दिन पहले स्लोगन था कि जो बच्चे समय को अमूल्य समझकर चलते हैं वो कभी भी समय पर धोखा नहीं खाते। तो हमेशा हमें ये जागरूक रहना चाहिए कि कौन से समय में हम चल रहे हैं, कितना महान समय है, कितना अमूल्य है ये, कितना कीमती है। अगर इस समय को हम ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो सारे कल्प की तकदीर पर लकीर लग जाएगी। बाबा ने कहा भले स्वर्ग में आ जाएंगे लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। स्वर्ग में आना बड़ी बात नहीं है, वो तो बाबा कहा वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन मुख्य बात है वहां ऊंच पद पाना। और उससे मुख्य बात है, अगर हम समय को संगम पर बर्बाद कर रहे हैं तो वर्तमान भी जीवन में खुशी नहीं रहेगी, जीवन में उदासी रहेगी, पुरुषार्थ में रस नहीं आएगा। इसलिए इस समय को हमें कैसे सफल करना है, बाबा समय समय पर अनेक प्रकार की युक्तियां देते रहते हैं कि अपने मन बुद्धि की दिनचर्या बनाओ। अगर मन बुद्धि की दिनचर्या सेट है तो जो व्यर्थ संकल्प है वो स्वतः मर्ज हो जाते हैं। स्लोगन था ना कुछ दिन पहले, सवेरे से मन बुद्धि की दिनचर्या सेट कर दो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो व्यर्थ में हमारी बुद्धि ना जाए उसके लिए क्या करें, आपके क्या विचार हैं? मन को बिजी रखना, कैसे बिजी रखें? श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ संकल्पों से मन बुद्धि को बिजी रखना है। तो श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प कहाँ मिलेंगे? मुरली से मिलेंगे। आज बाबा ने कहा ना कि ये है मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री है। यहां तुम्हें क्या मिलता है? ज्ञान का मटेरियल मिलता है। अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं है और हम बिल्डिंग को लगे चले बनाने तो बिल्डिंग कैसे तैयार होगी? तो ये भी हमारे 21 जन्मों के लिए बिल्डिंग तैयार हो रही है ऊंच देवता पद की। तो ज्ञान का मटेरियल होना बहुत आवश्यक है और ज्ञान का मटेरियल मिलेगा मुरली से। अब प्रश्न है, मुरली से हमारा प्यार कैसे बढ़े? रोज रोज सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा और विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना पड़ेगा। क्योंकि मुरली से प्यार नहीं है तो ज्ञान योग में रस आएगा नहीं, सेवा में उतना मजा नहीं आएगा। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही बाबा के महावाक्य हैं। बाबा की अनुभूति भी तभी होगी जब उसके महावाक्य से प्यार है। बाबा कहते ना, मुरली से प्यार है तो समझो मुरलीधर से प्यार है। तो मुरली को हम कैसे याद रखें? आज की मुरली के ऊपर एक चिंतन चर्चा करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा? बनी हुई है सबकी, सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। हाँ हाँ, क्योंकि सब पतित हैं इसलिए बाप आए हैं। हाँ, बाप श्रीमत पर तुम्हारी तकदीर को बनाने के लिए आए हैं, तुम्हें पावन बनाने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ, बच्चों को बनना है रूप संत, जैसे बाप है वैसे बच्चों के मुख से भी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं, किसी को जख्मी नहीं करना है, कटाक्ष नहीं करना है, टोंट नहीं करना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, नुकसान नहीं करना है, जख्मी कर देते हैं। कभी आपको किया किसने जख्मी? माता जी हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा देखते हैं, मुरली लिखते रहते हैं। हाँ, जैसे जैसे ज्ञान धारण होता जाएगा हमारे मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। मैनर्स माना हमारी आदतों में सुधार होता जाएगा, अच्छा आचरण अच्छा बनता जाएगा। तो मुरली से प्यार हमारा तभी बढ़ेगा जब बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। बुद्धि तभी पवित्र बनेगी। अगर मन बुद्धि रूपी पात्र हमारा पवित्र नहीं है तो ये रत्न ठहरेंगे कैसे? क्योंकि तो परम पवित्र बाबा का ज्ञान है, परमात्मा का, परम पवित्र सुप्रीम सोल का ज्ञान है। तो हमारा बुद्धि रूपी पात्र भी वैसा स्वच्छ चाहिए। और ये स्वच्छ होने के लिए कुछ थोड़ा टाइम नहीं, लंबे समय से लंबा समय देना पड़ेगा इसको। और हम ये नहीं कह सकते कि समय नहीं है, समय तो वास्तव में हमारा बहुत होता है। अगर हम सच्चे दिल से स्वयं को साक्षी होकर देखें कि सारे दिन में हमारा कितना टाइम वेस्ट जाता है, पहले तो हमें उसकी जांच करनी है कि हमारा समय कहां कहां वेस्ट जा रहा है। सवेरे से लेकर शाम तक, चाहे हम सेवा पर बैठे हैं, बाबा ने कहा कोई कोई सेवा बुद्धि वाली नहीं होती, हल्की होती है, तो वहां भी मन बुद्धि हमारा कहां जा रहा है? कल की मुरली में था ना, बच्चे भले बैठे यहां हैं लेकिन मन बुद्धि फिर भी बाहर भटकता रहता है। तो मन बुद्धि एकाग्र होगा कैसे? तो मुरली को, मन बुद्धि को मुरली में जबरदस्ती डुबाना पड़ेगा, ज्ञान के सागर में जबरदस्ती उसको डुबाना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है, मुरली तो हम सुनते हैं बार बार, वही माँ वाक्य लगते हैं, वही लगते हैं, वही वही लगते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। लेकिन ये भी साधारण माँ वाक्य जो लगता है, इसका भी बहुत अर्थ है, अर्थ सहित। उस दिन बाबा ने कहा ना, तुम बच्चे मुझे अर्थ सहित याद करो। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा इसका? हाँ, उसका मनन करना है, चिंतन करना है। बाबा ने कहा मुझे अर्थ सहित याद करो, अर्थात बाबा जो है जैसा है उसको वैसा पहचानो। अर्थ सहित अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना। अर्थ सहित अर्थात उससे हमें क्या क्या प्राप्ति होती है उसको याद करना। अर्थ सहित अर्थात हमारे जीवन में पहले क्या था और अभी क्या बन गया है। कोई भी कर्तव्य को हम जब करते हैं, अगर उस कर्तव्य के बारे में समझ है तो समय पर हम उसको कर सकते हैं। अगर उस काम के प्रति हमको समझ नहीं है तो हमारा मन बुद्धि विचलित होता रहता है। अगर समझ है तो समय पर और जल्दी कर सकते हैं, सफलता मिलती है। उसी तरह से इसी तरह ज्ञान मार्ग में भी जितना समय हम करते हैं उतना समय उसको अर्थ सहित अर्थात उसके महत्व को समझना है। हम मुरली सुन रहे तो क्यों सुन रहे हैं, उसका क्या फायदा है? ऐसे तो टाइम दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं हमारी प्रेजेंट लग रही है, ठीक है हम मुरली में गए थे सुन के आगे, नहीं अर्थ से तो उसका कोई महत्व है, क्यों हम अपना टाइम दे रहे हैं उसके लिए, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा होगा, कौन सी बीमारियां हमें जो पूर्व में लगी हुई थी मुरली से वो जा रही हैं, तो उसके अर्थ को समझना है। अर्थ सहित नहीं करते हैं तो जैसे भक्ति होगी, भक्ति में क्या करते थे, हनुमान जी के आगे, दुर्गा जी के आगे, माथा टेक के आगे, अर्थ तो पता ही नहीं है, तो वैसा इधर नहीं कि मुरली गए सुन के तो आगे, फिर वैसे को वैसे, फिर कल सुबह होती है फिर योग लगाया फिर मुरली सुनी फिर वैदिजर्या, नहीं कुछ जीवन में परिवर्तन चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारे मैनर्स सुधरते जाने चाहिए, बाबा कहते ना, तो तकदीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने आप से कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, उन प्रतिज्ञाओं में स्वयं को बांधना पड़ेगा। कौन कौन से बाबा की प्रतिज्ञाएं हैं हम ब्राह्मणों के प्रति, या मर्यादाएं कहेंगे जिसको, उन प्रतिज्ञाओं के अनुरूप अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। बाबा ने कहा हम कुछ एक प्रतिज्ञाएं बनाएंगे, बाबा ने कहा सदा सम्मान में रहो, तो सम्मान आएगा कैसे जीवन में, जैसे इतने इतने बड़े सम्मान हैं, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, लेकिन एक्सेप्ट कैसे करेगी इसको आत्मा, इसको एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए भी तो वैसी ताकत चाहिए ना, क्योंकि बहुत हैवी गोली है और तुरंत हम उसको खा लें, हाजमा हमारा वैसे ठीक नहीं है तो क्या काम करेगी वो ठीक से, उल्टा से भी हो सकता है, तो भले हम बैठे हैं मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं लेकिन उसका साकाश तो जा नहीं रहा, उसके वाइब्रेशन वायुमंडल जीवन में विचारों का जो परिवर्तन होना चाहिए वो तो स्वयं में अनुभव हो ही नहीं रहा है। तो सम्मान के अर्थ को समझना है, और वो सम्मान में हम तभी टिक सकते हैं जब लंबे समय से जो हमको सम्मान दे रहा है उसके साथ समय बिताना, बाबा के साथ समय बिताना, बाबा के महावाक्यों के साथ समय बिताना, बाबा के महावाक्यों को जिगर से लगाना, जैसे आशिक माशूक होते हैं तो लव लेटर लिखते हैं, उसी एक लेटर को कितना प्यार से पढ़ते हैं, वो 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ते रहते हैं, वो सालों साल तक पढ़ते रहते हैं, तो बाबा क्योंकि उसमें उसका भावनाएं समा गई हैं, उसमें उसका प्यार समा गया है, इसी तरह से बाबा की मुरली से हमारा पहले प्यार होना चाहिए, उसमें हमारी भावनाएं होनी चाहिए। जब तक मुरली के प्रति हमारा लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, उसमें हम उसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, तो जीवन में आएगी कैसे वो। तो मुरली को हल्के से नहीं लेना है, बहुत हल्के से लेने के बाद ही हमारे जीवन में फिर उतार चढ़ाव आता है, स्थिति हलचल में रहती है। इसलिए मुरली से कोई भी विशेष 4 पेज की मुरली है सारी याद नहीं भी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ एक पॉइंट हमको ग्रहण, क्योंकि कुछ एक महावाक्य तो रोज वैसे होते हैं लेकिन कुछ एक है जैसे आज तकदीर बिगड़ी हुई तुम्हारी है कैसे बनेगी वो, तो सारे दिन में क्या मैंने वो ध्यान रखा कि हमारे मुख से कोई बोल ऐसा तो नहीं निकला। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म बोल हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, जैसे कोई बैठा है सेवा में बैठा है तो कोई सामने वाला आके कटाक्ष करता है कि ऐसे फ्री बैठे रहते हैं, ये भी हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके मन से वो कौन सी सेवा कर रही है तो हमको दिखाई नहीं दे रही है, और सीधा हम कटाक्ष कर दिया कि ऐसे फ्री बैठा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसका योग कहां लगा हुआ, उसके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी वो सेवा पर उपस्थित है, इसके बारे में तो हम अनभिज्ञ है ना, उतने तो जाने जाने हारा बनने के किसी के मन के अंदर जाग कर झांक के देखने में ये क्या कर रहा है। तो हमारे बोल से किसी को भी, बोल से तो क्या बाबा कहते, संकल्प से भी नहीं, संकल्प भी नहीं चलना चाहिए कि ये तो ऐसे बैठा हुआ है। बाबा ने कहा हर एक आत्मा इस ड्रामा में यूनिक है, विशेष है, हर एक की विशेषताओं को देखना है, जो संडे की मुरली थी ना, क्योंकि जब भी बाबा आते हैं तो सबसे पहले हमारी विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं, सीधा विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तुम विशेष बच्चे हो, बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे विशेष स्थानों पर विशेष सेवा कर रहे हैं, विशेष आत्माओं को ला रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस थी उसका जिक्र किया था ना संडे की मुरली बाबा ने, तो बाबा ने सबसे पहले बच्चों को उमंग उत्साह दिलाते हैं, बच्चों की विशेषताओं को देखते हैं, आज बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना कि किसके माफिक युक्तियुक्त कार्य करना है। आई की मुरली में था ना, चूहा के माफिक, चूहे को भी अकल होती है, उसको अपना भोजन ग्रहण करना है, दूसरे को तकलीफ देने से पहले उसको फूंक मारता है ताकि उसको तकलीफ ना हो, भोजन करने के बाद चलेगा फिर जो मर्जी होता रहे। ऐसे युक्तियुक्त हमको काम करना है। तो बाबा जी की जो अनेक प्रकार की युक्तियां दी गई, समय पर हमको अगर बुद्धि में रहेंगी तो हम उसको प्रति कार्य में लगा सकते हैं। तो मुरली से हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, और ये सबसे बड़ी सेवा है किसी का मुरली के प्रति प्यार पैदा कर देना। क्योंकि अंत समय बाबा ने कहा, क्योंकि दिन प्रतिदिन तो महान परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं ना, है ना। बाबा ने कहा कोर्स किया 7 दिन का, फिर जहां भी जाओ मुरली तो तुम्हारे पास है, कहां भी बैठ के बाबा को याद करो। तो जिस स्थान पर भी हम रहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा, 4 दिन 5 दिन पहले मुरली थी ना, ज्ञान की पराकाष्ठा है तो मन बुद्धि में हलचल नहीं होगी, कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, शीतल होती जाएंगी, और ज्ञान बुद्धि में है, भरपूर है, तो मनन चिंतन करना सहज हो जाएगा। ज्ञान बुद्धि में भरपूर है तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। ज्ञान बुद्धि में भरपूर है तो मन बुद्धि एकाग्र होता जाएगा। ज्ञान बुद्धि में भरपूर है तो संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। बाबा का दूसरों को सही तरीके से परिचय दे सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञान के प्रति रस बिठा सकते हैं, अगर ज्ञान की पराकाष्ठा है तो। ज्ञान की पराकाष्ठा है तो माया जीत बन जाएंगी, स्वयं पर पूरा नियंत्रण होगा, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल होगा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा कहां से होगी, मुरली से होगी ना। इसलिए इसको हल्के से नहीं लेना, भले 4 पेज की मुरली हमको हाथ में नहीं आती है, लेकिन अगर उस मुरली से भी हम 5-10 लाइनें लिखकर उस पर फोकस करें, उस पर चिंतन करें, बाबा क्या क्या कह रहे हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ जी, क्या, हाँ, ज्ञान दान करते जाएंगे तो बुद्धि पत्थर से पार्श्व बुद्धि बनती जाएगी। पार्श्व बुद्धि को पार्श्व बनाने का एक ही साधन है ज्ञान, दे दान तो छोटे ग्रहण, है ना। तो ज्ञान का भी दान करना है, और जो व्यर्थ का दान बाबा को करते जाना है। तो जितना हम ज्ञान में प्रखर होते जाएंगे तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः लगेगा। हमारा जो योग है केवल बैठे बैठे नहीं, ज्ञानमय योग है ये, उसमें केवल ये नहीं कि एक ही संकल्प, उसमें ज्ञान का चिंतन कुछ चलना चाहिए। ज्ञान सागर से हमारा कनेक्शन है तो चिंतन भी तो हमारा वैसा चाहिए ना। तो पहली बात थी स्वमान में रहने के लिए हमको बाबा की मुरली से अति प्यार होना चाहिए, तो स्वमान हमारा जागृत होगा। मुरली एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन का ऑक्सीजन है, श्वास है वो। अगर मुरली नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है, मुरली नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा। मुरली ठीक से नहीं पढ़ते तो सेवाएं तो करेंगे लेकिन यथार्थ सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी भी लेकिन अल्पकाल की मिलेगी। अगर सफलता मिलेगी तो उस सफलता से खुशी भी अल्पकाल की होगी, अगर सफलता मिलती है तो उस सफलता से मिलने वाली जो आत्मा है वो भी वैसे चलेंगी जिसने जैसे ज्ञान सुना है। अर्थात जो हमारी मानसिक स्थिति है, मानसिक धरातल हमारा है, जैसे हमने बीज बोया उसी अनुसार वो फल मिलेगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हमें सुमान में रहने के लिए मुरली से हमारी प्रीत होनी चाहिए, और जहां प्रीत होती है वहां मन बुद्धि अपने आप ही जाता है, फिर उसको बार बार जोड़ना नहीं पड़ता है। तो है ना, आशिक माशूक है, उसको याद थोड़ा नहीं करना पड़ता है, नेचुरल है। जैसे लौकिक में भी देखते हैं बच्चा मां बाप को याद करता है तो मां बाप को याद करने के लिए माला थोड़ा नहीं पकड़ता है, वो मम्मी डैडी ऐसा थोड़ा नहीं बोलता है, नेचुरल है ना वो। तो हमारा याद जो भी, ये भी नेचुरल है, तो नेचुरल बाबा ने कहा ये भी अंत तक होगा, अंत में तुम निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, संपूर्ण ज्ञानी भी हम अंत में बनेंगे। अभी हम अपने को नहीं कह सकते कि संपूर्ण ज्ञानी है, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी हमारा जो दृष्टिकोण है थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जो बच्चे ज्ञान में नहीं है उनके प्रति हमारा अलग दृष्टिकोण हो जाता है, और जो बच्चे ज्ञान में है उनके प्रति अलग दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे ज्ञान में आने के बाद जो ज्ञान में हम सोचते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ये तो ज्ञान में चल रहे हैं, इनको तो समझ है सारी, लेकिन सारी समझ नहीं है अभी तक भी। अगर ये सारी समझ होती तो गलती होनी नहीं चाहिए हमारे से। हम ये नहीं कह सकते हम संपूर्ण ज्ञानी बन गए, हमारा कोर्स अंत तक चलता ही रहेगा, ये अंत तक हमको सीखते ही रहना है। ये नहीं हम सोच सकते कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया है, कोर्स तो हमारा अंत तक चलता रहेगा। बाहर वालों के प्रति हमारी भावना तो श्रेष्ठ रहती है, हमको पता है कि ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन आज ही हम पढ़ रहे थे बाबा ने कहा सबसे ज्यादा शुभ भावना तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति भी रखनी है, क्योंकि संसार को परिवर्तन करने वाले तो हम ब्राह्मण आत्मा है ना। अगर हमारी एक दो के प्रति शुभ भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना है, जो संडे की मुरली में था ईर्ष्या, क्यों पैदा होती ईर्ष्या? वास्तव में ईर्ष्या पैदा होने का कारण है कि हमारा परिवार के प्रति प्यार कम है। बाबा थोड़े ईर्ष्या करते हैं, कभी करते हैं तो हम भी तो उसके बच्चे ने क्यों ईर्ष्या करें, क्योंकि परिवार को हमने अपना नहीं समझा है। जहां अपनेपन की भावना आएगी तो ईर्ष्या आ ही नहीं सकती है। जैसे मां बच्चों के प्रति ईर्ष्या करेगी कभी, बाप बच्चों के प्रति ईर्ष्या करेगा, है ना। बाप अगर कलेक्टर है तो बेटे को ये नहीं सोचेगा मेरे नीचे रहे, सोचेगा वो सोचेगा बेटा तो मेरा प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, बड़ा मंत्री बने, ये थोड़ा सोचेगा मेरा बेटा मेरे पीछे रहे, सोचेगा दे। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें अपने समान बना रहे हैं, तो हमारे में ये भावना कहां से आई, क्यों पैदा हो रही है की भावना? अर्थात हमने ज्ञान को समझा नहीं है। तो ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको। तो एक तो सम्मान में रहना है सदा, समय को बर्बाद नहीं करना है, कहां कहां हमारा समय जा रहा है ये प्रतिज्ञा करनी कि बाबा आज से मैं सदा सम्मान में रहूंगा। दूसरा, सदा सर्व को सम्मान देंगे, ये भी अपने से प्रतिज्ञा करनी है रोज कि सदा सर्व को सम्मान देंगे, स्वयं को भी और दूसरों को भी, स्वयं को भी सम्मान देना है। उस दिन बाबा ने कहा ना, स्वयं के शरीर को चाबुक लगाते हुए, जैसे ये तो मेरा पुराना शरीर है, मेरा भाग्य ऐसा है, पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट कैसा है, मेरा तो योग लगता नहीं है, शरीर तो बन नहीं पाता है, अवस्था तो एक रस होती नहीं है। ये भी जैसे हम अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपना भी जैसे तिरस्कार कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं जैसे, ये भी तो स्वयं को सम्मान देना है। बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई कि ज्यादा नहीं सोचे, वो नहीं सोचो तो क्या सोचना है, याद तो मेरा सुधर्म ही है, बाप को याद करना तो बच्चे का सुधर्म ही है, मैं सहज योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मैं ही कल्प कल्प की पात्र आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं। तो सम्मान तभी हमारी बुद्धि में आएंगे जब पहले हमको स्वयं को सम्मान देंगे, अपने अंदर जो हीन भावनाएं हमने भर के रखी है उनको निकालना है। हम बाबा के बच्चे सभी विशेष हैं, एक से बढ़कर एक है। बाबा एग्जांपल देते हैं ना, किले की अगर एक भी ईंट निकल जाए तो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। एक जंजीर है, वो जंजीर जो होती है उसकी एक कड़ी जहां कमजोरी होती, टूटने वाली होती है, और वही उस सारी जंजीर की ताकत होती है वो, क्योंकि अगर वो तुरंत टूट जाए तो सारी जिंदगी की ताकत खत्म होगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा का एक एक बच्चा, बाबा कहते चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, लास्ट बच्चा भी है, वो मेरा विशेष बच्चा है, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो बाबा का हर एक बच्चा यूनिक है, विशेष है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है, ऊंच ते ऊंच है, उसके नैना का नूर है, विश्व को परिवर्तन करने वाला है। बाबा ने कहा ना, तो पहली तरीका स्लोगन था, कौन सा था, विश्व परिवर्तक कौन है? आप बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक बोला, आपके लिए बोला था बाबा ने, लेकिन क्या उसमें क्या करते हैं, विश्व परिवर्तक आत्मा वो हैं जो एक सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें। जहां भी नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव बाजार है, या कोई नेगेटिव चर्चा चल रही है, जैसे अगर हम वहां प्रवेश करते हैं उस एटमोस्फेयर को बदलना, कोई बात चल रही है उस बात को बदल देना, पॉजिटिव में बदल देना, तो विश्व कल्याणकारी बाप के हम विश्व परिवर्तक बच्चे हैं तो हमारे कितने जबरदस्त कर्तव्य हैं। तो हम सभी विशेष हैं। तो अपने आप से ये भी प्रतिज्ञा करनी है, एक तो सदा सम्मान में रहेंगे, सर्व को सम्मान देंगे और संघ दोष में कभी नहीं आएंगे। आज के मूल्य में था ना, संघ दोष में कभी नहीं आएंगे। संघ दोष की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि कर्मेंद्रियां ऐसे इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें, समय उसमें बहुत जल्दी फास्ट बीत जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे सुख का समय जल्दी बीतता है, दुख का समय बड़ा लंबा खींचता जाता है, ऐसे ही कर्मेंद्रियों को आदत पड़ी है पुरानी बातों को, बीती बातों को चिंतन करने की, किसी की निंदा करने की, चुगली करने की, प्रपंच करने की, फलाना तो ऐसे है वो ऐसे है, इसमें हमारा क्या भला हो रहा है। चलो कानों में पढ़ लिया, पढ़ भी गया, लेकिन क्या हम उसके प्रति अच्छा सोच रहे हैं? यह हमारी भी नेगेटिव सोच ही होगी। अब ये परिवार हमारा है, परिवार में कोई छोटा है कोई बड़ा है, पांच हाथ की पांच उंगलियां हैं, अब इनको हम काटेंगे तो नहीं ना, छोटी को ये थोड़ा कहेंगे तुम छोटी क्यों है, अगर उसको चोट लग जाएगी तो उसको मरम पट्टी करेंगे ना कि काट देंगे उसको। इसी तरह अगर ब्राह्मण परिवार में कोई गिरता है तो बाबा ने कहा एक तो वो पहले गिरा और ऊपर से हम उसका परचिंतन निंदा करके उसको और गिरा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या, गिराना या उसको उठाना? तो पूरा ब्राह्मण परिवार अपना है, अगर कोई गिरता भी है, किसी से कोई कमी कमजोरी, किसी की भी कोई कमी कमजोरी है, उसको नजरअंदाज करके उनको आगे प्रोत्साहित करना है, ये हमारा कर्तव्य है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर आज तक हमारे से भी तो कितने विकर्म हुए होंगे ना, अगर सोचे तो कितने विकर्म हुए होंगे, लेकिन क्या बाबा ने हमको कहा कभी? कितना धैर्य तक का सागर है, कितने सालों से बाबा हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसका धैर्य देखो। तो संघ दोष में कभी नहीं आना, संघ दोष में आने से बहुत सारी कमियां, जैसे जैसे एक गुण अनेक गुणों को ले आता है, ऐसे ही अनेक एक अवगुण अनेक अवगुणों को जन्म देता है, और बाबा ने कहा छोटी सी भी चिंगारी होगी तो अंत में वो चिंगारी भस्म कर देगी। तो लंबे समय का अभ्यास है हम सबको संघ दोष से बचना, दूसरों की विशेषताओं को देखने का अभ्यास। तो ये प्रतिज्ञा करनी कि कभी भी हमको संघ दोष में नहीं आना है, संघ दोष में आकर हम परचिंतन नहीं करेंगे, प्रपंच में नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम सदा सर्व की विशेषताओं का ही वर्णन करेंगे, विशेषताओं को ही देखेंगे, गुण ग्राह की दृष्टि रखेंगे। हर एक आत्मा में गुणों से भरपूर है अगर हम प्रयास करें तो, ये हमको आपस में वर्कशॉप करनी चाहिए, है ना? एक दो के गुणों की विशेष गुण या विशेषताएं उनका हम लिखें आमने सामने बैठ के, आप में कौन से गुण हैं, नहीं तो अवगुण तो हमको सहज याद आ जाते हैं, जैसे कोई सामने आएगा तो उसके अवगुण ही सामने दिखाई देंगे। तो गुणों को देखने की प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि 63 जन्म से तो हमने अवगुण ही देखे, तो थोड़ा टाइम बैठ के हम गुणों पर नजर डालेंगे, गुणों पर चिंतन करेंगे, तभी तो हमारी आदत बनेगी ना। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, समय नहीं करेंगे, तो जो आदतें पहले से खराब पड़ी हैं वही आदतें हमें अदालत में पहुंचा देंगी और फिर वहां जुर्माना भरना पड़ेगा। तो संघ दोष में कभी नहीं आना। दूसरी अगली बात, संगठन से कभी किनारा नहीं करना है। कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला, स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन हमको उससे किनारा नहीं करना है, क्योंकि सारे बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, जो सारे हिसाब किताब हैं अभी ब्राह्मणों से ही चुक्त होने हैं। अगर हमने किनारा कर दिया तो कभी आगे मिलेगा वो मोड़ पर, और अभी हिसाब नहीं किया तो आगे फिर हिसाब बढ़ता जाएगा। इसलिए जिस तरीके से सहज रूप से हिसाब हमको चुक्त करना, चुक्त करते हुए संगठन में मिलकर रहना है। पता तो चलता है सभी का, कोई कैसी मेंटेलिटी वाला है, कोई कैसी मेंटेलिटी वाला है, लेकिन उस संगठन में रहते हुए हमको एडजस्ट होकर चलना है, किनारा नहीं करना है। सबकी विशेषताओं को पता है, विशेषताओं को ग्रहण करते हुए उसको, उन विशेषताओं को स्वयं मिलाना है और भी वातावरण में उनको फैलाना है, और विशेषताओं को देखना है, कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करना उसमें। तो संगठन से कभी किनारा नहीं करना है। दूसरा, सेवाओं में हमें सेवाओं के क्षेत्र में रहते हैं तो सेवा में रहने से हमारी बहुत सारी सेफ्टी होती है। एक स्लोगन था ना, अगर सेवाओं का उमंग उत्साह है तो, एक 6-7 दिन पहले स्लोगन था, हाँ छोटी छोटा छोटा भी चलेगा कोई बात नहीं, छोटी छोटी बीमारियां स्वतः मर जाएंगी। अगर सेवा में उमंग उत्साह है तो छोटी छोटी बीमारियां स्वतः मर जाएंगी, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उसमें। तो सेवाओं में रहने से हमारी बहुत सेफ्टी है, बहुत सुरक्षा है, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। सेवाओं में हमारा, अगर हम एकाग्रता पूर्वक करते हैं तो सेवाओं में हम योग की बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारा पुण्य का खाता बढ़ रहा है, किसकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, कितना हमारा इतना बड़ा भाग्य बना है, भाग्य की तिजोरी बाबा हमारे भर रहा है, तिजोरी में दिन प्रतिदिन जमा होता ही जा रहा है। तो सेवाओं में कभी हम आनाकानी नहीं करें, सेवाओं में रहते हुए भी सेवा हमारी योगमय सेवा हो जाए, वो योगयुक्त सेवा। और ये सारा ज्ञान चिंतन ही है, ऐसा नहीं कि सेवा बैठ गए तो वहीं बैठ गए हम चुप करके, नहीं, मन बुद्धि में कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है, किसी को सकाश दे रहे हैं, कोई ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में घूम रहा है, तो नेचुरल वैसे वाइब्रेशन वायुमंडल में प्रवाहित हो रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य तो कोई कहता थोड़ा नहीं है कि वो तो एक ही जगह स्थिर है, लेकिन उसकी रोशनी तो पूरे संसार में जा रही ना। ऐसे हम जहां भी, इसलिए कहते हैं बाबा ने ज्ञान सूर्य की स्थिति में, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, बाबा ने मुरली में कहा था, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से ज्ञान की किरणें लेकर सारे संसार को रोशनी देना, यह तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। स्वयं को रोशन करेंगे, स्वयं की आत्मा को फुल चार्ज करेंगे, स्वतः वैसा वायुमंडल में प्रवाहित होता जाएगा। आज के स्लोगन में था ना, आज का स्लोगन भी इसी संदर्भ में था, कौन सा स्लोगन था, वो कल वाला कलर कर्मयोग वाला, क्या बोल्ड कट्ठे लगे हुए ना, हाँ, खुश नसीबी की झलक तब दिखाई देगी जब, स्लोगन को एज इट इज नहीं पढ़ना, उसको उल्टा पुल्टा करके पढ़ना है। जब उल्टा पुल्टा कर अपने माना अपनी सहज रूप से हम याद कर सके वैसे पढ़ना है, उसमें था खुश नसीबी की झलक दिखाई तब देगी जब हम अनुभवी स्वरूप होकर रहेंगे, हाँ जैसे आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ वो स्वतः हमारे चेहरे से प्रदर्शित होगा, जैसी हमारी सोच है वैसा वायुमंडल बनता जाएगा। तो निरंतर योगी की स्थिति दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जानी चाहिए, है ना। तो अपने आप से जो सेवाओं में कभी आनाकानी नहीं करेंगे, ये भी प्रतिज्ञा करनी है। जो भी बाबा की सवेरे से लेकर शाम तक रात्रि तक जो भी मर्यादाएं मिल रही हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार ही चलेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे। कितनी प्रकार की श्रीमत मिली है, ना, अपनी अपनी एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्वयं के चिंतन को बढ़ाना है, कोई भी 2-4 पॉइंट लेके उन पर विस्तार करना है ना। जैसे संडे की मुरली विशेषताओं के ऊपर थी, उसके बीच में फिर बाबा ने शुभ भावना के बारे में कहा था, कैसे हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखें, कर्म फिलॉसफी के बारे में कहा था, हिसाब किताब के बारे में कहा था, सहनशीलता के बारे में कहा था, ऐसे वर्ड मेथड माना शब्दों, कुछ एक शब्द पकड़ लेने हैं, उन शब्दों के आधार पर चिंतन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि चिंतन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उतना जीवन में रस नहीं आएगा, चिंतन बढ़ाना बहुत जरूरी है, उतना योग में भी उतना मजा नहीं आएगा। तो चिंतनशील बहुत बनना है, नहीं लिखने आता उनको भी लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मर्यादाओं का कभी हमें किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करना है। और क्या था आज की मुरली में, बाबा को कौन सा अक्षर बहुत मीठा है, प्रिय है, बाबुल, हाँ आज की मुरली में था बाबुल अक्षर कितना मीठा है ना, हाँ जी, बाबुल अर्थात बापू जी, पिताजी को बाबुल कहते हैं, बाबा, हाँ पुराने जमाने में जो जब कन्या घर को छोड़ के जाती थी, जब रोती थी ना, तो वो बाबुल कहती थी अपने पिताजी की कि बाबुल के घर से चली, एक गाना बजता था है ना, हाँ, बाबुल के घर से दुआएं लेती जा, कुछ ऐसे एक गाना हुआ करता था, अभी तो भूल गया। तो बाबुल माना एक बहुत दिल का जिगरी शब्द है वो, तो बाबुल अक्षर कितना मीठा है। ऐसे पीयू भी बोलते थे पिताजी, वो ही पिताजी, हाँ। तो बाबुल पीयू ये पुराने शब्द हैं, सिंधी ही उर्दू के शब्द बहुत मीठे वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे नए नए जो शब्द आते हैं मुरली में, उसको हमको पकड़ के रखना है, चिंतन करना है। और क्या था आज की मुरली में? दान तो कर दिया, और मीठे भी हो गए, किनारा भी कर लिया, और जरमुई जंगमुई वाले से किनारा करना है, हाँ हाँ। ये गुह्य से गुह्य बातें जिन्हें विशाल बुद्धि बनकर धारण करना, बुद्धि को संकुचित नहीं रखना है। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो मन बुद्धि हमारा संकुचित होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, और यही बुद्धि फिर सारे कल्प काम करेगी, बड़े बड़े निर्णय करने पड़ेंगे आगे जाके, है ना। तो पहले से बुद्धि को विशाल बनाने का अभ्यास अभी करना है, हाँ। ये वरदान में था ना आज, और कल का वरदान बताओ फिर, कल का वरदान क्या था? हाँ कुछ तो बनाई देना फटाफट, कोई भी वरदान बोलते उसमें रुकने का नहीं, फटाफट बोल देने का, ठीक बोला आपने। वो था एक्चुअली विपरीत भावनाओं को, है ना, हाँ। तो विपरीत भावना ठीक है, और आया था अशुभ भावनाओं को भी शुभ भावना में परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन होगा कैसे? जब पहले हमारे पास ज्ञान का मटेरियल होगा, अगर ज्ञान का मटेरियल नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा, है ना। तो हाँ जी, ऊपर ऊपर होगा। और सुनाओ आज की मुरली से क्या याद है? हाँ, हम सब बिगड़ी को बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ भी हमारा ढीला नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ के भी प्रति प्रतिज्ञा करनी है, ना स्वयं के पुरुषार्थ में ढीला होना है, ना किसी के पुरुषार्थ में बाधक बनना है, है ना। स्वयं के पुरुषार्थ में हम ढीले कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ ढीले होते हैं? अमृतविल, हाँ जी, एक दूसरे की बुराइयां जब देखने लेते हैं तो पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाता है, कारण बना देते हैं कि इसके कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, और या बीमारियां हैं उनको हम आलस्य लबेलापन है, सवेरे मत वेले बहुत मीठी नींद होती है, नींद तो मीठी होती है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही तो हमारी परीक्षा है, उस परीक्षा को पास करना है ना। तो अमृत वेले भी जो हमारा पुरुषार्थ है ठीक होना चाहिए। जितना भी हम समय योग में बैठते हैं तो योग में अच्छे अच्छे अभ्यास करने चाहिए, योग को लंबे समय तक हम योग में बैठे तो मन बुद्धि को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, है ना। जैसे हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लो एक घंटा योग में बैठे तो योग में एक घंटे में 12 काम करने, समझो हमको 5-5 मिनट, है ना। जैसे मान लो घर में काम है, सवेरे बच्चों को स्कूल में भेजना है तो बहुत सारे काम होते हैं माताओं को, ऑफिस में जाना है तो भाइयों को बहुत सारे काम होते, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, समय देना पड़ता है, इतने समय हमको स्नान करना है, इतने समय हमको भोजन करना है, इतने समय हमको तैयार होना है, सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो ऐसे हम सबको एक घंटा अगर योग में बैठे हैं 60 मिनट में 12 काम करने, समझो। सबसे पहले स्वयं को चार्ज करना है, 5 मिनट पहले मैं शरीरी आत्मा हूं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा और ज्योति बिंदु बाबा, बस दोनों कंबाइंड है और मैं आत्मा फुल चार्ज हो रही है। 5 मिनट इसी में अपने मन को एकाग्र करके रखना है, वही चित्र सामने मन बुद्धि में इमर्ज रहना है, उससे मन बुद्धि खिसकाना नहीं है, अगर खिसकता भी है फिर वहीं वापस लाना, मैं शरीरी आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं और बाबा से फुल चार्ज हो रही हूं, पवित्रता का फुल करंट मुझ आत्मा में आता जा रहा है ना। ऐसे बाबा की सर्वशक्तियां मुझ आत्मा को फुल चार्ज करती जा रही है, मुझ आत्मा के जन्म जन्म के दुख दर्द बीमारियां पाप कर्म सब भस्म होते जा रहे हैं, मैं आत्मा जैसे निर्मल शुद्ध शांत पवित्र बनती जा रही हूं। तो 5 मिनट अपने स्वयं के ऊपर फोकस करना है, फिर अगले 5 मिनट स्वयं की देह को साकार, बाबा की सारी किरणें मुझे आत्मा से होते हुए पूरे शरीर में जा रही हैं, क्योंकि स्वयं को देह को ही तंदुरुस्त रखना है तभी तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा ना। अनेक प्रकार की बीमारियां तो आएंगी, बीमारियों में सहन करने की शक्ति तभी आएगी जब बाबा से हमने पहले से ली हुई है। अगर पहले से हमने अभ्यास नहीं किया तो फिर शक्ति कैसे आएगी, क्योंकि बीमारियां तो हिसाब किताब कहते, बाबा कहते मैं डॉक्टर नहीं जो ठीक करने आया हूं, वो तो आएगा हिसाब किताब। अब खाना ही ऐसा तो वो क्या करेंगे, उसका असर तो होगा ही है। योग की शक्ति है तो हमारे शरीर पर उनका इफेक्ट कम होगा। जैसे हम दादियों को देखते हैं, बीमारी तो होती है ना, अब दादियों को योग कम थोड़ी नहीं करती है, लेकिन उनके ऊपर बीमारी का इफेक्ट नहीं है। कभी हम चेहरे पर देखते हैं, बीमारी तो आएंगी आएंगी, लेकिन चेहरे पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो पहले से वो ज्ञान योग की ताकत है अंदर में, वो लंबे समय की साधना है जो उनकी रग रग में बस गई है। तो अगले 5 मिनट में स्वयं की देह को भी चार्ज करना है, निरोगी बनाना है। जैसे बाबा से सर्व शक्तियों का करंट मुझ आत्मा के इस रथ में जा रहा है, मुझ आत्मा के इस देह में जा रहा है, और ये सारी कर्मेंद्रियां शीतल शुद्ध पवित्र होती जा रही हैं, और ये सारी कर्मेंद्रियां बाबा की श्री मत के अनुसार कर्तव्य के लिए प्रेरित हो रही है जैसे, है ना। तो ये 5 मिनट इसके लिए दे, उसके बाद किसके क्या करेंगे और कहां कहां देंगे। 5 मिनट आत्मा के लिए हो गए, 5 मिनट शरीर के लिए हो गए, नेक्स्ट 5 मिनट जी प्रकृति को भी देना। और उससे पहले हमें स्वयं से चलना, जैसे हम यहां बैठे हैं, आत्मा आगे शरीर आगे, इसके बाद स्वयं के आसपास का घर जो है, घर हम जहां रहते हैं या हमारा सेवा स्थान जहां हम रहते हैं, उसको चार्ज करना है। धीरे धीरे यहां से बाहर निकलना है 5 मिनट उसके लिए, कि ये सेवा स्थान बिल्कुल निर्विघ्न रहे, जो भी हमारे सेवा साथी हैं वो भी निर्विघ्न रहे, है ना। तो 5 मिनट इसके लिए, जैसे बाबा से सर्वशक्तियों की छत्रछाया पड़ रही है उस स्थान पर। तो 15 मिनट हो गए, अगले 5 मिनट क्या करेंगे, यहां से फिर बाहर निकलो, और यहां से बाहर कहां जाएंगे, सेवा स्थान से बाहर निकले, और जो भी सारे दिन में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, जो भी सारे दिन में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनके प्रति भी पहले से सहकार देना कि वो भी बाबा के कार्य में सहयोगी बने, बाबा का परिचय ले लें, बाबा से उनको कुछ प्राप्ति हो जाए, उनके भी कोई दुख दर्द मिट जाए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, उनका भी कुछ भला हो जाए, दो अक्षर उनकी बुद्धि में ज्ञान के पड़ जाएं, मन मना व मध्या जीव के दो मंत्र पड़ जाएं। तो 5 मिनट अगले उनको, जैसे संबंध संपर्क वालों को भी ऐसे साकार देना है। अगले 5 मिनट क्या करेंगे, हाँ 5 मिनट सेंटर्स पर, जितने भी सेवा केंद्र हैं, बाबा ने कहा ना पिछले 2-3 साल पहले कहा था कि अमृत वेले के बाद विशेष टाइम निकालकर 10 मिनट सभी सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाने के लिए सकास दो, जो भी सेवा स्थान है, तो उनको 5 मिनट उसमें सकास देना है। और 5 मिनट क्या करेंगे, ये कितने हो गए अभी, 20 मिनट हो गए ना, अब अगला 25 मिनट, अगले 5 मिनट क्या करेंगे, हाँ जो भी हमारे ब्राह्मण भाई बहने हैं, है ना, तो सभी ब्राह्मण भाई निर्विघ्न रहे, है ना, उनके भी जो भी जीवन में आने वाले विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो भी खत्म हो जाएं, उनके लिए भी वो करना है, परिवार के लिए भी वो करना है जो हमारे जीवन में बाधक बनते हैं, या वो भी बाबा के बन जाएं, जैसे बाबा से वो अगर दूर हैं तो उनको बाबा का परिचय मिल जाए, है ना। तो ये हो गया 5 मिनट किसके लिए, जो भी ब्राह्मण परिवार के, सब ब्राह्मणों के घर में हमारे फरिश्ता स्वरूप में, हम इस देह से फरिश्ता स्वरूप निकले, जैसे हजारों फरिश्ते निकलकर हर एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गया है। अगले 5 मिनट क्या करेंगे, अभी कितने मिनट हो गए, अभी ये 30 हो गए, 25, अच्छा 25, अच्छा अगले 5 मिनट क्या करेंगे फिर, सुदर्शन चक्र से, हाँ वो भी करना है। उससे पहले 5 मिनट फिर भगत आत्मा को सकाश, इष्ट देव स्वरूप में स्थित होकर समस्त विश्व में जितने भी भगत आत्मा हैं उनकी शुभ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अशुभ नहीं शुभ कामनाओं को, ऐसे नहीं सोचना मैं भगत की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा हूं, उनके अशुभ कामनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए भक्तों की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, नहीं तो वो सोचेंगे चोरी करने के आ जाएगा चोर, देखो काली जी ने मेरी भाव पूर्ण कर दी भावना। इसलिए होता क्या है, जो भी डकैत लोग या बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी भी इष्ट देव होते हैं, है ना, तो वो भी पाठ पूजा करके जाते हैं, तो उनकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि संगम पर अगर हम सोचते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो उनकी अशुभ भी पूरी हो जाती है। इसलिए कोई भी हमको संकल्प करना है तो वो भी सोच समझ के करना है कि भक्तों की सभी शुभ कामनाएं उनके लिए, तो वो भी वैसे शुभ ही है। वो जिस कर्म करने के लिए जा रहे, जो कर्म करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो वो शुभ ही है उनके अनुसार, लेकिन हमें अपने अनुसार शुभ कामनाएं देनी है। इसके बाद थोड़ा चिंता और करेंगे बाद में, पहले हम ट्रैफिक कंट्रोल पर। तो किसको दिया था लास्ट में? भक्तात्माओं को। उसके बाद शुभ भावना, शुभ मनोकामना पूर्ण। और अगले कितने मिनट हो गए? अभी तो 30 हो गए होंगे, अगले 5 मिनट क्या करेंगे? हाँ, जो आने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो भी उनका भी करेंगे। तो आने वाले जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनका भी आह्वान करेंगे। और जो छोड़कर चले गए हैं भूतपूर्व भी के, तो उनका भी, उनको भी साकार देंगे कि वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए, कहाँ चले गए हमारे भाई, आ जाओ वापस। तो वो भी साकार देंगे। और अगले 5 मिनट, ये कितने हो गए? 35 हो गए ना। हाँ, अगले 5 मिनट क्या करेंगे? हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं, है ना, जब हमारा कोई नियर डियर बीमार होता है तो कितना दुख दर्द होता है, या हम स्वयं बीमार होते तो कितनी परेशानी होती है, दुखी अशांत तड़पती, अलग कैटेगरी करेंगे ये, अलग। ये पहले जो बीमार लोग हैं जो हॉस्पिटल में तड़फ रहे बेचारे, तो वहां 5 मिनट डेली साकार दिन। संसार में जितने भी हॉस्पिटल हैं, या कोई भी बीमार है, वो चिल्ला रहा है, करा रहा है, कितनी भयानक क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, कोई मरने के उस पर पहुंचा हुआ है लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहा है, बीमारियां ऐसे पकड़ के रखी है हिसाब किताब, तो उनको भी 5 मिनट साकार देना कि इनके भी दुख दर्द खत्म हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट है 5 मिनट अशांत भटकती तड़फती हुई आत्माएं, है ना, बहुत सारी वायुमंडल में ऐसी आत्माएं, ऐसे बाबा ने कहा। अंत में प्रकृति के 5 तत्व ये बहुत हलचल में आएंगे और भटकती तड़फती आत्माएं भी आएंगी, तो पहले से हमको साकार देना इनको, है ना, 5 मिनट ही केवल, लेकिन उसमें बहुत जबरदस्त उनका आह्वान नहीं करने का, बाबा को स्वयं के साथ बिल्कुल कंबाइंड रखना है, एक सेकंड भी किनारा नहीं करना उसको, क्योंकि वो शांति के लिए भटक रही हैं। स्वयं अगर हम शक्तिशाली हैं तो शांति की अनुभूति करके चले जाएंगी, अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो स्वयं को पकड़ने की संभावना पूरी होगी वो। इसलिए बाबा ने कहा अंत में एक एक अंदर 10-10 घुस सकती है, तो पहले से हमको शक्तिशाली बनाना है। सर्वशक्तिवान की शतरछाया के निरंतर नीचे रहकर उन आत्माओं को सकाश देना है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट प्रकृति के 500 तत्वों को, क्योंकि जो शरीर है ये भी प्रकृति के 500 तत्वों का, अंत में प्रकृति भी उन्हीं की मदद करेगी जिन्होंने पहले से ही प्रकृति को मदद करी है। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, आज भी भूकंप आए ना मेक्सिको में, कितने 200 लोग मर गए, है ना। तो दिन प्रतिदिन परिस्थितियां भी विकराल होती जा रही हैं, कैसे प्रकृति का अपना विकराल रूप दिखा रही है, जो नहीं चित्त में भी होता है तुरंत अचानक कुछ भी हो जाता है। तो प्रकृति के 500 तत्वों को भी एक एक मिनट, नहीं जैसे प्रकृति बहुत सुंदर उसमें अभ्यास कर सकते हैं, जैसे प्रकृति के 5 तत्व हैं, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल में जैसे हम बैठे हैं, मैं यहां से निकला फरिश्ता और सीधा समुन्द्र के अंदर चला गया, है ना, और समुन्द्र के अंदर ही हूं, डूबेंगे तो हो ही नहीं, अंदर में डर नहीं लगे डूब जाएंगे तो जैसे पूरे पानी के ऊपर चल रहा हूं, है ना, जैसे बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही हैं और वो सारे पवित्रता की किरणें सारे संसार में जितना भी पानी है सबको पवित्र बना दे रही, पवित्र वाइब्रेशन जा रहे हैं उसे, मेरे पांव से पवित्र वाइब्रेशन जा रहे हैं, मेरे हाथों से जा रहे हैं, तो सारा जल जैसे पवित्र होता जा रहा है, जल तत्व संपूर्ण पवित्र होता जा रहा है ना। ऐसे अग्नि है तो योग अग्नि प्रज्वलित है इधर से, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे से कंबाइंड है और मुझ योग अग्नि से संसार की सभी अग्नि पावन बनती जा रही है ना। तभी तो वो देवताओं के रूप में गायन होगा, पहले से हम उनकी सेवा करेंगे, है ना। ऐसे पृथ्वी है तो चलते फिरते पृथ्वी को साकाश दे रहे हैं, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, जिधर से मैं निकलता हूँ सारे विश्व का परिक्रमा कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, तो सारी धरती को जैसे पवित्र बनाता जा रहा हूँ। ऐसे वायु है तो जैसे वायु मुझ पवित्र फरिश्ते से स्पर्श करती है, समस्त जगत की वायु पवित्र होती जा रही है ना। ऐसे पांच पत्र कौन रह गया, आकाश, आकाश में विचरण करना, आकाश भी पवित्र बन रहा है ना। तो ऐसे प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्र होना, कितने लंबे समय तक हमारा युग चल सकता है। हाँ, सूरज को भी दे सकते हैं, सबको ही देना है। फिर लास्ट में एक संकल्प, अगर सारा कोई रह भी जाए तो एक संकल्प करना उसमें एक लाइन में कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्रकृति के पांचों तत्वों सहित विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा से शक्ति लेकर दे रहा हूं। इसमें सारा कुछ आ जाता है। तो प्रकृति के पांच तत्व हो गए। फिर पांच मिनट देश में जो सुरक्षा प्रहरी है, देश या विदेशों में जहां भी है, हमारी सुरक्षा के लिए कितना वो ज्ञान से कितना दूर है बेचारे, उनको ड्यूटियां ऐसे मिली हैं, ज्ञान सुन ही नहीं सकते, क्या करेंगे वो, उनको कौन ज्ञान सुनाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से बिल्कुल बेखबर है, अनपढ़ हैं, जिनको पता ही नहीं है गांव शहर क्या होता है, गांव क्या चीज है, जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं अभी भी, उनको ज्ञान कौन सुनाएगा, उनका उद्धार कौन करेगा, उनको भी साकाश देना है। तो ऐसे कितने साकाश हो जाते हैं, अभी तो 60 मिनट से ऊपर हो गया होगा। हाँ, किसी भी इसमें कर सकते हैं, हाँ किसी भी इसमें करते हैं 12। हाँ, अमृत वेले स्वयं को भर लो, फिर दिन में कर लो, ये जैसे भी आपको सुविधा मिले अपनी सुविधा अनुसार करते रहना, मनन लगे रहना है ना। तो ये कितने हो गए, 60 हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गए, कोई बात नहीं, ज्यादा भी हो जाएगी। हाँ, ये भिन्न भिन्न अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैं आत्मा पूर्वज हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ और वृक्ष के हर पत्ते को मुझ आत्मा से जैसे पवित्रता का जल जाता जा रहा है, और मैं आत्मा बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हूँ, ऐसे हम अनेक प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। हाँ, सबका धर्म संस्थापक है माता जी बजगीगढ़। और किसी को कुछ पूछना। हाँ, भोजन करते समय भी देखो, बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, बड़ा लंबा समय भी कर सकते हैं उसमें। हम देखो, जब हम भोजन करने से पहले जो बाबा को याद करते हैं, तो बहुत सारे हम जिनके हाथों से भोजन निकला है, यहाँ तक पहुंचा है, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद उस किसान को जिसने वो धरती में बीज बोया, जिसने वो धरती में 6 महीने पालन पोषण किया उसका, उसको बचा के रखा, उसने फिर हमारे पास, फिर आगे बिजनेसमैन है या हमारे पास पहुंचा, तो उसका कितना धन्यवाद है ना। आज संसार जो में किसान लोग जो है कम होते जा रहे हैं, है ना, सब नए आगे पढ़ते लिखते जा रहे हैं और खेत जो जमीन बंजर पड़ती जा रही है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो हैं जी, गांव जो शहरों में बदल जा रहे हैं, तो उस किसान का कितना धन्यवाद। फिर जिन्होंने भोजन बनाया उनका कितना धन्यवाद, है ना, जिन भोजन परोसा उनका कितना धन्यवाद, और जिन्होंने भोजन खाया उनका भी धन्यवाद। अगर खाने वाले नहीं होते क्या करते, कुछ भी नहीं करते, तो सभी का धन्यवाद, और शिव बाबा का तो धन्यवाद है ये, है ना। और किसी को कुछ पूछना, कुछ नहीं पूछना। हाँ देखो, नींद हमको पर्याप्त करनी चाहिए, जैसे रात को है, रात को 10 बजे सो जाना चाहिए हमको, क्योंकि कई बार दिन में सबको अगर रेस्ट नहीं मिलती है, अगर 1 घंटा रेस्ट मिलती है तो ठीक है, नींद को शरीर को कम से कम 6 घंटा नींद तो चाहिए चाहिए। अगर हमारा ज्ञान का मनन चिंतन बहुत है तो 5 घंटे में भी काम चल सकता है। तो अगर मुरली में नींद आती है तो पहले तो रात को नींद करो, और सवेरे जल्दी नहीं उठो, जल्दी उठने के लिए फिर ताकत चाहिए बहुत ज्ञानियों की। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो फिर वो जल्दी उठना बहुत भारी पड़ेगा। 3:30 बजे उठो, 3:30 से 5, 1.5 घंटा 1 घंटा योग करो, और बाकी जो चलते फिरते योग करना है फिर। और मुरली में भी फिर वहां लिखना है, खाली सुनना नहीं है, लिखना है अपने तरीके से, मुरली के पॉइंट अलग अलग करने हैं, जिन पॉइंट को हम रोचक तरीके से बुद्धि में हम ग्रहण कर सकें। ऐसा नहीं जैसे सामने वाला सुना रहा है एज इट इज हमने ऊपर लिख दिया, नहीं, अपने अनुसार, है ना। जैसे उस दिन बताया था ना ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए, तो लिस्ट निकाल, तो हमने वहां लिखे 25-30-35-40 पॉइंट लिख दिए थे, तो अपने तरीके से लिखना उसको, क्योंकि उसको ग्रहण करना अपनो, केवल सुन के नहीं आने का वो। अच्छा, फिर मुरली से हम निकलते हैं, बाबा ने कहा जैसे बाहर गए तो जैसे सोडा वाटर हो जाते हैं, क्यों होते हैं फिर? तो वहां से हम यहां तक आ रहे हैं तो उस पीरियड में हम क्या कर रहे हैं? उसमें कम से कम कोई बरदान स्लोगन, कोई मीठे बच्चे, कोई बीच में पॉइंट नया आया उसको याद करें, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, पहले खुद को सुनाने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए। मन ही मन वो चिंतन चलता रहना चाहिए। जैसे बता रहे थे इस महीने में कितने स्लोगन हुए, 20 स्लोगन, तो 20 स्लोगन हमको याद होने चाहिए। अगर हम बैठ जाए तो हम 20 स्लोगन याद आ सकते हैं, अगर हम बैठेंगे तो, है ना? तो धीरे धीरे खुद को ही और इसमें जागरूक करना है, हमेशा जागृत अवस्था में रहना, नींद की अवस्था में नहीं। नींद माना अज्ञान की विस्मृति की निद्रा नहीं, है ना? एक तो दूसरी नींद है वो तो आएगी आएगी, और बाबा ने कहा ना अगर नींद नहीं आती तो योग में बैठ जाओ, लेकिन वो खटिया में, क्लास में नहीं। ऐसे नहीं नींद नहीं आ रही तो क्लास में आगे बैठी, यहाँ वो खटिया पर करना है योग। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में फिर चलते हैं।